देखिए, हम सब एक बात को जानते हैं कि नारायण अंतर्यामी है, और जो नाम और रूप है वो इंद्रियों के अनुभव की चीज है। और नारायण मन और इंद्रियों के अनुभव से परे है। तो नाम और रूप का संकल्प जो है वो हमारे मन में उदय होता है, और नारायण जब नाम रूप से परे हैं इसका मतलब वो हमारी कल्पना में आ ही नहीं सकते। तो इसलिए ईश्वर के बारे में यदि हम जैसे कि संसार के बारे में सोचते हैं, किसी चीज़ का नाम याद आता है तो उसका रूप तुरंत याद आ जाता है, किसी का रूप याद आता है तो उसका नाम तुरंत याद आ जाता है, नहीं याद आएगा तो मन में बेचैनी हो जाएगी, इसका क्या नाम है, उसको याद करने की आप कोशिश करते हो। तो संसार का जितना भी व्यापार है, संसार की जितनी भी सोच है, वो नाम रूप के अंतर्गत आती है। अब यदि आप कह रहे हैं जैसा कि नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर, तो यदि हम पद का मतलब चरण से लें तो नारायण का जब ना नाम है ना रूप है, फिर उसके चरण कैसे होंगे? क्या चरण होने की कोई संभावना है? यदि नारायण के चरण होते तो वो मन के अनुभव में आता, वो मन के संकल्प में आता, वो आ नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ नारायण पद का मतलब कुछ और है। महाराज जी ने इसको खोला है, उन्होंने समता विलास में लिखा है, चरण कमल। चरण कमल का मतलब है आत्मध्वनि, जिसको हम नाद कहते हैं, जिसको कुंडलनी भी कहते हैं। इस देह के अंदर जो चेतन शक्ति हमारे रोम रोम में व्याप्त है, उस शक्ति को हम कुंडलनी भी कहते हैं, जिसको महर्षि रमण कह रहे हैं कुंडलनी आत्मा एक ही चीज है। तो महाराज जी अपने बारे में भी यही कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघार। जो गुरु हमने नाम रूप के द्वारा धारण किया है जीवन में, उसके चरण तो बाहर हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो गुरु खुद कह रहा है कि मैं अंदर हूं, तो फिर उसके चरण कैसे हो सकते हैं? अंदर तो चरण नहीं हो सकते, अंदर तो इतनी जगह ही नहीं कि उसके चरण हो अंदर। तो इसीलिए हमें सत्पुरुषों की बातों पर बारीकी से ध्यान देना ही पड़ता है, तभी ये बातें समझ में आती हैं। महाराज जी ने गुरुपद सिद्धांत में समता विलास में खुद लिखा, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है, जो घट घट व्यापक है। इसका मतलब गुरु अपने स्वरूप को बता रहा है कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वही गुरु है। और महर्षि रमण भी ये बात बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं कि सारे संसार में केवल एक गुरु है और वो परमेश्वर है। तो हमारे अंदर क्योंकि भेद बुद्धि है, इसलिए हम इन चीजों पर विश्वास तक नहीं कर पाते, हम सोच ही नहीं पाते कि गुरु केवल एक कैसे हो सकता है, जबकि जितने भी गुरु संसार में हैं वो यही बात कह रहे हैं। महर्षि रमण यहां तक कह रहे हैं कि ईश्वर गुरु कुंडलिनी और मंत्र ये एक ही चीज है, इसी को ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इसको अवतरण कहते हैं, कि एक ही सत्ता विभिन्न रूपों में हमारे कल्याण के लिए प्रकट होती है, ताकि उनके द्वारा हम उस निर्गुण निराकार सत्ता तक, जो अंतर्यामी है, जो रोम रोम में व्याप्त है, उस तक पहुंच सके। तो इसीलिए गुरु की आज्ञा का मतलब होता है, गुरु की बात को जब तक हम फॉलो नहीं करते, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, अपनी बुद्धि का समर्पण उसके आगे नहीं करते, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि जब तक गुरु की बात के आगे आपकी बुद्धि का समर्पण नहीं है, तो अपनी बुद्धि से, अपनी धारणाओं के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने लिमिटेड ज्ञान के अनुसार आप सोचते रहोगे और निर्णय करते रहोगे। जबकि ईश्वर प्राप्ति तब होती है जब पूरी तरह से बुद्धि अपने आप को समर्पित कर देती है। ईश्वर चरणों में कह लो चाहे उसको, चाहे गुरु चरणों में कह लो, बात एक ही। क्योंकि गुरु ईश्वर एक ही चीज है, वो अलग चीज नहीं है। ये हमारी धारणा है कि वो अलग है। तो जब बुद्धि का इस प्रकार का समर्पण चाहिए ईश्वर अनुभव के लिए, तो जब ये समर्पण होता है तब हम गुरु की बात को जैसा वो लिख रहा है, जैसा वो कह रहा है, उसी के अनुसार सोचने की कोशिश करते हैं। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं, वो 10 करोड़ की कोई काउंटिंग नहीं है। यहां एक गुरु क्या कह रहा है वो काउंटिंग है बस। वो भी ऐसा कह रहा है, वो भी ऐसा कह रहा है, वो भी ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है, इसका कोई महत्व नहीं यहां पर। तभी तो महाजन कहा, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघाड़। तो आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघाड़ने की बात आ रही है, अर्थात घट में तू अंतर्यामी गुरु का दर्शन कर। ये कब संभव है, जब तू गुरु के अनुसार सोचेगा और उनके निर्णय के अनुसार साधना करेगा और उनके निर्णय के अनुसार संसार के बारे में सोचेगा। तो नारायण पद बंदीय ताप तपन होए दूर। हम सब जानते हैं ताप तपन क्या है, ये मन की जितनी भी चिंता फिक्र है ये सब ताप तपन है। और यदि प्रकृति के ताप की बात करें तो आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के रोग होते हैं। मानसिक रोग को आदि बोलते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि बोलते हैं, और प्रकृति के द्वारा जो कष्ट शरीर पर आते हैं उसको उपाधि बोलते हैं। तो इनको भी ताप बोलते हैं। इनके द्वारा जो जीव को दुख मिलते हैं वो भी ताप है। तो ताप तपन, ये 3 ताप और मन की जितनी भी बेचैनी है ये सारा ताप तपन है। तो ये ताप तपन कब दूर होगा, जब मन की सत्ता भस्म हो जाएगी। स्रोत इसका मन है ना, या यूं कह लेते हैं इसको कि मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। कहने के 2 तरीके हैं, बात एक ही। तो मन की लीनताई की जो स्थिति है वो ताप तपन परमानेंट दूर होने की स्थिति है। तो अब बताइए, मन के ऊपर ईश्वर मौजूद है, तो मैंने मन के ऊपर पहुंचना है। और यदि मैं अपने विश्वास के अनुसार चलता रहा, समर्पण मेरा नहीं है, अपनी बुद्धि के लेवल पर ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूं सारी जिंदगी, तो मन कभी खत्म होगा आपका? इसी को महाजी कह रहे हैं, प्रेमी ये कर्तापन, जिसको हम अहम भी बोलते हैं, अहम भाव बोलते हैं, ये बिना समर्पण के खत्म नहीं होता। और महाजी एक बात और कहते हैं, समर्पण से ही यह रास्ता शुरू होता है और समर्पण में ही यह रास्ता खत्म हो जाता है। तो सोचिए, जब हमारा मार्ग शुरू होता है समर्पण से, ये किस प्रकार का समर्पण होगा कि प्रभु मैं तो जानता नहीं, इस प्रकृति के बारे में, इस संसार के बारे में, तुम जैसा बताते हो क्योंकि तुम मेरे गुरु हो, तुम जो बताओगे सत्य बताओगे, मैंने अपनी धारणाओं को आपके मार्गदर्शन के अनुसार बदलना है। तब आप इस प्रकृति के बारे में क्या निर्णय है, मेरे शरीर के बारे में क्या निर्णय है, मन के बारे में क्या निर्णय है, जप के बारे में क्या निर्णय है, हर निर्णय को आप गुरु के अनुसार विचार करने की, सीखने की कोशिश करोगे। सिमरन के बारे में महाराज जी ने 2 निर्णय दिए हैं जो लिखित रूप में उपलब्ध है। 1 निर्णय तो महाराज जी ने यह दिया कि गुरु जो नाम देता है उसको श्वास के साथ यदि जाप किया जाए, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु की सीख के अनुसार, तो अंदर वो अंतर्यामी प्रकट हो जाता है, उस ईश्वर का बोध हो जाता है। और उस नाम का उन्होंने क्या नाम दिया? बीज मंत्र। और समतावलास में लिख दिया, बीज मंत्र उसे कहते हैं जो किसी सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ होवे। उसमें कंडीशन है ये कि सिद्ध पुरुष आपको मिल जाए आपके भाग्य से, प्रभु कृपा से, वो आपको बीज मंत्र दे दे, तो ऐसा बीज मंत्र ही बीज मंत्र कहलाता है। कोई मनुष्य आपको दे दे तो वो बीज मंत्र नहीं रहता, वो केवल नाम होता है, एक भाषा होती है। जो गुरु बीज मंत्र देता है वो बीज मंत्र खुद गुरु होता है, जिसको महर्षि रमण कह रहे हैं कि आत्मा गुरु मंत्र एक चीज है। वो ईश्वर जिस प्रकार से गुरु रूप में अवतार लिया है ईश्वर ने, उसी प्रकार उस ईश्वर ने मंत्र रूप में अवतार लिया है, जिसकी परमिशन गुरु ने आपको दी है जाप करने की। तो इसीलिए वो अंतर्यामी गुरु है आपका, जो आपकी साधना में सहायक हो रहा है। उस गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है कि मन के अंदर सैकड़ों जन्मों के संस्कार मौजूद हैं, स्वभाव के रूप में, आपकी आदतों के रूप में, आपकी इच्छाओं के रूप में। तो ये जो संस्कार हैं जिसका आपको पता तक नहीं है, स्वभाव लेके आप पैदा होते हो और उसी स्वभाव के अनुसार जिंदगी चलती है आपकी, आपके अंदर शक्ति नहीं है कि उसको बदल लो। तो इतने जन्म जन्मांतर के संस्कार मैं कैसे भस्म करूंगा? तो ये गुरु मंत्र के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा ये भस्म होते हैं धीरे धीरे करके। और मैं यदि उसी में ही डाउट करता रहूं, लोगों की बात मान लूं, गुरु की बात मैं का उल्लंघन कर दूं, तो कहां जाऊंगा मैं? मेरी वही दुर्गति होनी है जो संसारियों की होती है। दूसरा निर्णय महाराज जी ने सिमरन के बारे में यह दिया कि महामंत्र प्रकट हुआ और उसकी वाणी प्रकट हुई। वाणी में इस महामंत्र के बारे में लोग तो जानते नहीं थे, तो वाणी उसका बयान कर रही है कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। ये त्रयोदश अक्षर मंत्र सर्व सिद्धि दातार है, और सर्व सिद्धि दातार केवल ईश्वर होता है, उसके अलावा कोई शक्ति नहीं है इस प्रकृति के अंदर जो सब कुछ सिद्ध कर दे। सब कुछ सिद्ध का मतलब होता है कि मन की कामना भस्म कर दे, तभी तो सब कुछ सिद्ध होगा, नहीं तो एक कामना भी बच गई तो वो एक तो बच गई। उसके लिए फिर ईश्वर से प्रार्थना कर दोगे, हे प्रभु इसको भी तू सिद्ध कर दे, अर्थात इसको भी पूर्ण कर दे। तो सर्व सिद्धि का मतलब हो गया कि जीव की कामना ही पूर्ण हो जाती है। कामना का मतलब कामना से जीव को निवृत्ति मिल जाती है। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, मंगल का मतलब होता है कल्याण, और कल्याण का मतलब होता है मोक्ष। तो जो इसका प्रेम से सिमरण करेगा, और प्रेम याद रखिए जिंदा वस्तु से होता है, जिसमें होश होता है, जड़ वस्तु से नहीं। जड़ वस्तु को आप पसंद करते हो ना पसंद करते हो, लेकिन जिंदा वस्तु को प्रेम करते हो या उसे नफरत करते हो। तो मंत्र जो है ये जिंदा वस्तु है, इसलिए इसको लाइव गॉड कहा जाता है, जीवित ईश्वर है ये चेतन ईश्वर है, ये चेतन मंत्र है, ये इसमें चेतना है इस मंत्र के अंदर। तो इस चेतन शक्ति को जब मैं चेतन समझकर, लाइव समझकर इसको प्रेम से स्मरण करता हूं, तो मेरा अपार कल्याण होता है। अपार कहते हैं जिसकी सीमा ना हो, सीमा रहित, और सीमा रहित क्या होता है उसको कहते हैं सर्वव्यापक। जो सर्वव्यापक है वही तो सीमा रहित होगा। तो मंगल पाए अपार, तेरा ऐसा कल्याण होता है जो सीमा रहित है, इसी का नाम है मोक्ष। तू सर्वव्यापक के साथ एक हो जाता है। तो बताइए कि वाणी तो इस मंत्र का बयान कर रही है, और क्या बयान कर रही है वाणी? कलह कलेश सब दूर होए, ये है ताप तपन। कलह कलेश सब दूर हो, सारा ताप तपन तेरा खत्म हो जाएगा। पाए ज्ञान तत्व योग, ज्ञान तत्व किसे कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं या समता को कहते हैं, समतत्व कह लो या ब्रह्म तत्व कह लो या केवल ब्रह्म कह लो। पाए ज्ञान तत्व योग, उस ब्रह्म से तेरा योग हो जाता है। मंगत तत् अक्षर नित गाइये प्रभु दर्शन हो सय। और ये अक्षर साधारण अक्षर नहीं है, ये तत् तत् कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म ही तो तत्व है, तो ब्रह्म रूप है ये मंत्र। तत् अक्षर इसका निरंतर जो जाप करता है, नित का मतलब होता है निरंतर, उठते बैठते चलते फिरते हर समय इसका स्मरण करता है, अन्यथा हम संसार का स्मरण करते, स्मरण से तो हम एक पल भी अलग होते नहीं। तो संसार जब दुख रूप है, प्रभु जब आनंद रूप है, तो मैं दुख का स्मरण करूंगा हर वक्त या आनंद का स्मरण करूंगा हर वक्त? तो हर वक्त मैं चलते फिरते उठते बैठते इस गुरु रूप मंत्र का, इस ईश्वर रूप मंत्र का मैं स्मरण करता हूं, इसलिए इसको सत मंत्र कहा गया। तो प्रभु दर्शन हो ऐसे, तो अंदर में मुझको ये मंत्र ईश्वर के दर्शन प्राप्त कराता है, ईश्वर से मेरा संयोग होता है, ईश्वर से मेरा मिलन होता है। तो अब बताइए कि सीधी सीधी वाणी है, लेकिन आपने बड़े प्रेमी देखे होंगे, बड़े लोग देखे होंगे, क्या इस वाणी को पढ़ते हैं, इस वाणी से सीखते हैं? इस तरह से गुरु ने तो अपना काम कर दिया, ईश्वर ने अपना काम कर दिया, हम ही संशय बुद्धि लेकर संसार में घूमते रहते हैं, हमने मेहनत नहीं की कि गुरु लिख क्या गया है। अरे जब गुरु आया है तो अंधेरा फैलाने थोड़ा आया होगा यहां पर, वो तो ज्ञान देकर गया होगा, साधना पद्धति देकर गया होगा। हम लोगों के कहने के अनुसार भटकते रहे तो गुरु का दोष है या हमारा दोष है? तो इसीलिए ये वैदिक काल से रीति चली आई है कि जो राजयोग है, जिसको श्वास के साथ जप करना बोलते हैं, श्वास का अंदर जाना बाहर निकलना, इसको राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग पद्धति में गुरु जब तक आपको खुद ना डाले, आप उसकी नकल करके किसी के द्वारा नहीं चल सकते। आप स्वतंत्र कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को पैदा भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, लोगों का पालन करो या लोगों का मर्डर करो। तो पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हो आप, पुण्य करने के लिए भी स्वतंत्र, लोग थोड़ा लेगा आपको, कोई प्रभु इतना ही करता है, गलत कर्म की सजा आपको गलत कर्म के हिसाब से देता है, अच्छे कर्मों का पुण्य फल आपको सुख रूप में देता है, जो कर रहे हो उसकी सजा भोगने को तैयार हो। तो इसलिए गुरु की बात मानकर यदि साधना करोगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी, लोगों की बात मान के साधना करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आप, और क्या, लोगों का क्या जाएगा? इस दुनिया में कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, और एक एक करोड़ शिष्य हैं उन नकली गुरुओं के। महाराज जी के तो 800-900 शिष्य थे, लेकिन नकली गुरुओं के एक एक करोड़ शिष्य हैं। तो बताइए, भले ही वो 900 शिष्य हैं महाराज जी के, कल्याण उनका होगा या 1 करोड़ शिष्य उनका कल्याण होगा? तो इसीलिए वाणी हर चीज बयान कर रही है। यदि कोई कहे मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, तो भाई किसी सही बुद्धिमान का संग करो फिर। अब आप टीचर ही उल्टा सीधा पकड़ लो तो वैसी शिक्षा देगा जैसा टीचर पकड़ा है, किसी का क्या दोष, दोष तुम्हारे ही कहा जाएगा, तुमने नकली टीचर क्यों पकड़ा? खोजबीन करते, 10 लोगों से पूछते, कुछ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते, कहीं धोखा ना खा जाओ, जिंदगी दांव पे लगानी है, ऐसे ही चल पड़ोगे आंख बंद करके भेड़ चाल की तरह से? तो सोच समझ कर जब व्यक्ति जिंदगी कितनी कीमती है इसका सदुपयोग करने की कोशिश करता है, तो प्रभु भी सहायता करते। इस दुनिया में असली नकली दोनों चीजें, और दुनिया का स्वरूप ही ऐसा है, असल यहां कम दिखाई पड़ता है, नकल ज्यादा दिखाई पड़ता है। नकल तो खुले में मिल जाता है, असल ढूंढना पड़ता है। हलवाई की दुकान भी देखोगे ना शहर में, तो भाई देखोगे कि असली मिठाई कौन बनाता है जो घी में मिलावट नहीं करता, ढूंढनी पड़ेगी आपको। सही कीमत का सामग्री कहाँ कहाँ उपलब्ध है, ढूंढनी पड़ेगी आपको। धोखे देने वाले आम मिल जाएंगे, ईमानदारी से सौदा देने वाला कोई कोई मिलेगा। तो जो चीज प्योर होती है वो बहुतायत में नहीं होती, उसकी समाज में हमेशा कमी रहती है, वो ढूंढनी पड़ती है, उसके लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। किसी बुद्धिमान का आशा लेना पड़ता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। हर मामले में यही है। तो जब हम इस गुरु की शुद्ध चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो आज के वक्त में महाराज जी की जो साधना पद्धति है वो महामंत्र के रूप में हमको उपलब्ध है। महाराज जी जैसा कोई दूसरा गुरु मिल जाए तो, और यदि वो बीज मंत्र दे दे हमको, ये तो उस पर डिपेंड करता है, हमारी डिमांड पे नहीं देता वो, वो हमारी पात्रता के अनुसार देता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो मांगूंगा गुरु दे देगा आपको, वो आपकी पात्रता देखेगा, आपकी क्षमता देखेगा, उसके अनुसार आपको साधना पद्धति देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। मैं अपने बारे में नहीं जानता, ये अंतर्यामी गुरु जानता है मेरे बारे में, ईश्वर जानता है, इसीलिए मुझको उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो जब मैं ऐसे गुरु की बात मानकर उसके आगे समर्पण करके चलता हूं, तब ये सारी बातें मुझको समझ में आने लगती है। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। अब लोग तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकालेंगे ना कि मंगत नाम के सतगुरु से जिसकी भी भेंट हो गई वो फिर गर्भ में नहीं आएगा, अर्थात उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसकी जन्म मृत्यु नहीं होगी। यही तो मतलब निकलेगा, सीधा सीधा मतलब तो यही निकल जाएगा, लेकिन क्या इसका यही मतलब है? जब ये बाहर गुरु मिलता है मंगत जैसा, तो वो आपको अंदर जाने का रास्ता बताता है। और जो गुरु खुद कह रहा है कि मैं तेरे अंदर बस रहा हूं, तो अंतर्यामी गुरु से जब तेरी भेंट होती है उस साधना करने के बाद, ऐसा जो शिष्य है वो फेर गर्भ नहीं आए उसके लिए है। यदि बाहर जो गुरु खड़ा हुआ है उससे भेंट होकर यदि जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाए, फिर साधना करने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी बुद्धि से भी विचार करो तो ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन चालाक बुद्धि वाले तो सीधे साधे लोगों को यही कहेंगे, भैया मैं गुरु बैठा हुआ हूं, नहीं नहीं मेरी शरण में आया तेरा मोक्ष हो जाएगा, यही तो कहेगा वो। तो वाणी वही होती है, अक्षर उसके वही होते हैं, लेकिन लोग चालाक लोग अपने अपने मन के मुताबिक उसके अर्थ निकाल लेते हैं। तो आपको तो सीखना ही पड़ेगा ना, जो स्टूडेंट है उसी ने खोज करनी है कौन सा अर्थ सही है। कुंजियां किताब की मार्केट में मिलती हैं, जो बुद्धिमान स्टूडेंट होता है वो ऐसे नोट्स खरीदता है, ऐसी कुंजी खरीदता है जिसमें ठीक अर्थ दिया हो, ये तो अपने अपनी खोज की बात है। जो मेहनत नहीं करते वो धोखा खा जाते, अध्यात्म में भी धोखा खा जाते हैं, संसार में भी धोखा खा जाते। तो जिसकी खोजी बुद्धि होती है, जो ठीक चीज की फिराक में रहता है, वो तो ठीक चीज ढूंढ ही लेता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, उसको तो प्योर चीज मिल ही जाएगी। जो नकलची है वो नकल में लगा रहता है, भेड़ चाल में लगा रहता है। और याद रखिए, जहां भेड़ चाल होती है वहां संख्या बहुत होती है, जहां प्योरिटी होगी वहां संख्या बहुत कम होगी। इसलिए जितने भी संसार में पूर्ण गुरु हुए हैं उनके शिष्यों की संख्या मुट्ठी भर हुई है बस, और जिनके नकली गुरु हुए हैं उनके तो अनगृत शिशु हैं उनके तो। इसीलिए जिसने ईश्वर प्राप्ति करनी है उसको तो बुद्धि लगानी ही पड़ेगी। बुद्धि यदि नहीं है, उसको अंदर विश्वास नहीं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तो भाई भगवान ने इतनी दृष्टि तो दी होती, इतनी अकल दी होती है कि व्यक्ति खोजबीन करके एक दूसरे से पूछ के पता लगा लेता है कि असलियत कहाँ है, पहुंच जाता है। जो दिल से खोज रहा है ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है, लेकिन ईश्वर भावना तो देखेगा, वास्तव में तो ये ईश्वर चाहिए नहीं चाहिए, या संसार की वासना पूरी करने के लिए ईश्वर चाहिए तुझे, ईश्वर तो जानता है, वो अंतर्यामी है ना। तो तुमको ठीक जगह ईश्वर ही ने पहुंचाना है, याद रखो, अपनी ताकत से नहीं पहुंच सकते आप, ईश्वर ने ही पहुंचाना है। इसलिए अपनी नियत शुद्ध रखो, लक्ष्य अपना आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बिना ईश्वर प्राप्ति के मेरी सदगति नहीं हो सकती, मेरी दुर्गति होनी ही होनी है, चाहे संसार में मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं। तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कैसे छोड़ देगा बताओ? वो ईश्वर आपको वहां तक पहुंचा देता है। नहीं कोई आदमी मिलेगा ना, तो स्वप्न में आकर उस व्यक्ति के द्वारा, उस देवता के द्वारा आपको बता देगा जिस पर आपकी श्रद्धा है। मान लिया किसी की हनुमान पर बड़ी श्रद्धा है और अंदर से तड़प है कि मुझे ईश्वर की खोज करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो स्वप्न में हनुमान जी आके बता जाएंगे तू इसके पास जा, यहां जा। देवता इतनी मदद तो करेगा आपको। तो इसीलिए वो जो चेतन शक्ति है वो किसी भी रूप में आकर आपकी मदद कर जाती है, आपके अंदर विश्वास डाल जाती है। चलने वाले यदि आप हैं, वास्तव में जिज्ञासु हैं, तो जब आप अंदर उस गुरु मंत्र की साधना करोगे तो उस प्रभु का आनंद अंदर प्रकट होगा, उस प्रभु का अंदर नाद रूप में, कुंडलनी रूप में अनुभव आपको प्राप्त होगा, वो अनुभव ही आपको अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। और जब अंतिम लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, जिसको कहते हैं ईश्वर प्राप्ति, तब आपके ये ताप तपन सारे खत्म होंगे, क्योंकि ये ताप तपन मन के अंतर्गत है और मन उस ईश्वर सत्ता में, उस चेतन सत्ता में लीन हो जाता है। वो मोक्ष की हालत है, वो जन्म मरण से बंधन मुक्ति है, उसी का नाम है शांति, उसी का नाम है आनंद, उसी का नाम है मोक्ष। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभूतम्।